कुंडलम गोकुले ब्रजमानम
Thank you.
Thank you.
वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमे गौगक्षिजे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आ देवी का सुभरगदगद याज्ञवाचा जाते पत्तभूमि दंडवतोद्भटारती अजापुषा तमगुदस्य जनस्य दृष्ट्वा गन्धर्विकेतवगणे गणनन्दिरे अङ्गश्यामलिं शताभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जड्डञ्जागुगरोऽप्य समविदधतमपट्टम्बरश्च श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनम् हृदिलसद्दामाभिरामोदरम् राधा कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजम् ज्ञायेन दाम। विहीनापराधलभ्यै शिष्टस्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो नमः। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपायन्माननिधिष्णुनन्दन् कृपां बुधिर्य करदुःखदुःखी सनातनस्तं प्रभु। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। तवैवास्मि तवैवास्ति न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं न मां चरणान्तिके। यत् किङ्करी सुबौ स खलु काभिवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले यच्चा कदार्थनिधे विशुभानुजाय तत् केलिकुञ्जभवनं गणमार्जनी स्यात्। नमामि स्वारं सचिदनन्दरूपं लसत्कुन्दलं गोकुलभ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाभावमानं परमृशमत्यन्ततदृष्टगोप्या। गोकुलभ्राजमानं एक शब्द से व्याख्या करते हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं। कृष्णचंद्र जी का रूप कितना सुंदर है गोपाल का, कि त्रैलोक्य में मनुष्यों और स्त्रियों से तो बात किया, ऐसा कोई नहीं है जो उनका रूप देखकर से मुक्त न हो। तार अनंत सुंदर रूप ये तारूप दर्शन करे के ना मुक्त हो ही जाए। लता गुल्म पर्यंत पशु पक्षी किरण कोकिल सकल कई खाने बोलते हैं सब सनातन गोस्वामी दशम स्कंधे का प्रियंग ते कल्पदायक रेणु गीत सम्मोहितार्थ चरितान न चले त्रैलोकम त्रैलोक सौभवम चिदंत निरुक्त रूपम जब गो द्रुम द्रुम मृगा कृष्ण इच्छा हो जैसे रात हो सर्ष पूर्णिमा दिन रात्रि को संध्या समय जब चंद्र उदित होते जब चंद्रमा उदित होने लगे अपनी लाल किरणों से लाल लाल किरणों से समस्त पूर्व दिशा का उस दिशा को एकदम रंजित कर दिया है। मानो कोई प्रियतम अपने प्रिया के मुख में गुले गुलाल लगा रहा हो, अबीर लगा रहा है। और उस समय में उन्होंने बंसी बजाया तो सुकुम करके समस्त गोपियां वहां पर उपस्थित थी। भगी दौड़ी कभी आई तो सोच रहे कि मैं अकेले आ रही हूं, उल्टे पुल्टे वस्त्र आभूषण सब धारण किए, गले का हार कमर में लगा लिया, कमर का गले में लगा लिया, कोई अंजन कर रही थी तो एक ही आंख में ही अंजन करके चल पड़ी, किसी के वस्त्र अंचल नीचे गिर रहे थे तो वो गिरते ही चले चल गए, इस प्रकार से सभी कही। उस समय में कृष्ण ने उनको देख करके कहा, ओ गोपियों, तुम मुझे दर्शन करने के लिए आई, मैं भगवान हूं इसलिए तुम हमें दर्शन करने के लिए आई, अथवा तुम ब्रज की शोभा देखने के लिए जिसमें कि सुंदर सुंदर पुष्प फिरे हुए हैं और पूर्णिमा का चांद है, सुंदर जमुना जी कलकल बह रही हैं, उन सब शोभाओं को देखने के लिए तुम आई, न किस लिए आई, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, आप लोगों का स्वागत है। गोपियां समझ नहीं सकी ये किसके लिए ये भूमिका बांध रहे हैं, वो चुपचाप सुनती रही। फिर बोले, अच्छी बात है, तुम लोगों ने ये सब सुंदर दृश्य देखा, हमारा भी दर्शन कर लिया, अब तुम लोग घर में लौट जाओ। गोपियां फिर भी कुछ नहीं बोली, गोपीगण तखन कुछ बोलवा। फिर कृष्ण ने कहा, देखो ये स्थान निर्जन है, रात का समय है, स्त्रियों के लिए इस भीषण जंगल में साधना उचित नहीं, क्योंकि इसमें भीषण ये सब जीव जंतु हैं, सांप भी होंगे, बिच्छू भी होंगे और भी जानवर भी हो सकते हैं, तुम लोग लौट जाओ घर, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर भी गोपियों ने कुछ नहीं, अच्छा पूरी बात तो सुन लेंगे, इनका कहने का मकसद क्या है, कार बोलवा कार की तात्पर्य उद्देश्य की एक जन्मकार चुपचाप था। फिर बोले, स्त्रियों का परम धर्म पतियों की सेवा है, यदि पति लंगड़ा विवाह अथर्व हो जाए, बूढ़ा भी हो, किसी काम का न रहे, कोई रोजगार नहीं पैदा कर सके, जिसके पास अर्थ नहीं है, और रुग्ण भी हो जाए, जैसे भी हो, स्त्रियों को सब समय उनकी सेवा करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है, वेद शास्त्र भी ऐसा है। तो तुम लोग घर को लौट जाओ और तुम लोग अपने धर्म का निर्वाह। फिर भी गोपियां कुछ नहीं, फिर उन्होंने कहा, यदि तुम लोग लौट नहीं जाते तो तुम्हें अधर्म होगा, ये तो बहुत जबरदस्त कार्य है, निंदित कार्य है। फिर भी वो कुछ नहीं करे, तखन तारा कुछ बोलो। फिर बोले, तुम लोग फिर भी लौट करके नहीं जा रहे, अच्छा यदि तुम्हारे पति लोग हाथों में लड़कियां लेकर और तुम्हें खोजते हुए निकल करके यदि यहां पर पहुंच गए तो फिर क्या होगा, देखेंगे जैसे मैं अकेला हूं, वो भी किशोर उम्र का हूं, नवयुवक हूं, और तुम युवतियां हूं, और एक दो नहीं लाखों की संख्या में तुम लोग उपस्थित थी, ऐसे निर्जन स्थान में तुमको देख करके और हमें देख करके क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे, तुम्हारे पिता भी खोजते खोजते शायद आ रहे हैं, तुम्हारी मैया भी या तुम्हारे भ्राता जो कोई भी होगा वो जरूर खोजेगा, ये कहां गई अभी, अभी अधिक रात भी नहीं हुई, 12 बजे रात या 1 बजे होता था वो भी कोई बात नहीं, सभी सोए रहते, अभी तो 8-9 बजने का समय, अभी चंद्र उदित हुआ पूर्णिमा का और तुम लोग आ गए, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तुम लोग अभी लौट करके चले जाओ। उस पर गोपियां कृष्ण को कह रही हैं, हम कैसे लौटें, हम लोगों का यह जो अधर्म हम लोग कर रहे हैं, ये पतियों की सेवा, पति ससुर इत्यादि की सेवा, घर इत्यादि की सेवा नहीं कर सकते, हम यहां आ गई, इसमें दोष किसका है? दोष यदि किसी का है तो आपका दोष, इसमें हमारा दोष है, जबकि ऐसे हमारा कैसे दोष होगा? इसलिए दोष है, काश्यम से कल्पदायक देन गीता, त्रैलोक्य में इतना सुंदर रूप आज तक कभी प्रकटित नहीं हुआ, जगत के लिए परम सौभाग्य की बात है, इतना सुंदर रूप सौभगम, इतना सुंदर रूप आज तक कभी प्रकटित नहीं हुआ है। हम स्त्रियों की बात तो क्या, हम तो बड़ी कोमल स्वभाव वाली हैं, जहां कुछ सुंदर चीज देखती हैं, मधुर बोली सुनती हैं, यदि कुछ मधुर रूप में उनको, यदि प्रौढ़ मैया, यदि स्त्रियां हैं उनको ज्यादा मधुर स्वर से अरे मैया मैयारी ज्यादा पानी को पिला दे, मैया एक रोटी दे दे, तो उसी में प्रसन्न हो जाती है। हम लोगों से कोई मधुर बात करता है, हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, ये स्त्री जाति का स्वभाव। फिर हम लोग तो सरल सीधी हैं और इस पर भी आपका तो इतना सुंदर रूप और उसमें कल्पदायक बेनी गीत, कल्पदायक बेनी गीत माने क्या, कल्पदायक माने आते मूर्छना स्वर युक्त, जैसे एक बेहला यंत्र होता है या सारंगी भी होती है, हारमोनियम में मूर्छना स्वर नहीं होता। मूर्छना स्वर किसको कहते हैं, कांपते कांपते धीरे 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 विरह के सुर में वो बजता है, जिसमें हृदय के अंतर तक में भी स्पंदन हो जाए, इतना वो ऐसा होता है मूर्छना स्वर युक्त, ये सब तो हम इसमें आकर्षित हो जाए तो इसमें बात भी क्या। त्रैलोक्य में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जो कि आपके इस इतनी सुंदर रूप त्रिभंगी और उस पर भी इतनी सुंदर बंसी वादन, बंसी का स्वर सुन करके कोई आकर्षित नहीं हो जाए और अपने धर्म को बदल न दे, आपके इस बंसी की तान से और आपके ये सुंदर मुखारविंद को दर्शन करके जड़ भी चेतन हो जाए, हो जाता है और चेतन भी जड़ हो जाता है। उसी के लिए कह रहे हैं जत गो, गो माने गैया, गाय चेतन है किंतु हो जाती है क्या, गा भी चेतन किंतु हो जाए जो क्या ना, एकदम ऐसे उठा लेंगे थी कान को थोड़ा सा ऐसा रहेगा तो ऐसे सीधे बना लेंगे, जिधर से शब्द आए और जिधर से शब्द आएगा ऐसे ऐसे करती है, मुख में ग्रास का कवल है, मुखे से ग्रास कवल, भीतरे जाते ना ऊपर नहीं आते ना, चुपचाप निष्पंदित से जैसे जड़ कोई पदार्थ हो ऐसे बढ़ी हुई। बीज चिड़िया जिसके दो पंख हों, बीज
बीज आए थे और
अच्छा दो पंखे नहीं पंखे भी हैं, तो इसलिए ये बीज जो है चिड़िया है पक्षी है पाखी गुनी, ये तो है चेतन इधर उधर दौड़ती हैं, प्रदुक्ति रहती हैं, कलरव करती हैं, किंतु उस समय जहां जिनको जो डाली मिल जाती है वृक्ष की या उसी कोई भूमि जहां कुछ मिल जाती है, बस सुनते ही बस वो चुपचाप डालियों के ऊपर में बैठ जाती हैं पक्षी और ध्यानस्थ हो जाती हैं, कोई भी शब्द नहीं करती, मानो ये मुनि लोग हैं, जैसे सुखदेव इत्यादि जो मुनि सनक सनंदन सनक कुमार हैं, ध्यानस्थ होकर के इस प्रकार से समाधि लगाए हुए हैं, मानो ये सब लोग हैं ध्यानस्थ होकर के। मृगा किसी को देख करके दौड़ करके भाग जाते हैं, हरिण पुरी मानुष से देखे कि कौन जिनसे देखे पा लिए जाए, किंतु आज ये मधुर बंसी का स्वर सुन करके और कृष्ण का ऐसा सुंदर मुखारविंद देख करके मधुर और भक्ते नहीं और सुन करके एकदम निकट चले आए, और हिरणिया उनके मुखारविंद की तरफ में देखने लगी, देख करके आंख की पलके नहीं गिरती, और उसका पति मृग सार कृष्ण सार मृग उसके पीछे खड़ा हुआ है, वो भी कृष्ण के तरफ में देख, तुमको चिंता नहीं, कहने वाला तो मैं था, मैं तो तेरे पीछे हूं, तुम देखो जितना सुंदर उनका रूप देख सकते भर देखते, वो भी आज चंचलता छोड़ करके और ये मृगी भी चंचलता छोड़ करके हजारों लाखों स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, और उनको कभी भी भय नहीं है, एकदम चुपचाप स्थिर होकर के वो सुन रहे हैं, और भी जितने भी इसके अंदर में और भी जितने वहां पर प्राणी हैं, सभी लोग पेड़ जो हैं, द्रुम द्रुम पेड़ ये तो जड़ के समान है, किंतु आज इनके डालियां कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके, और जब कृष्ण वहां पर है तो मानो अपनी डालियों को झुका करके जिस पर फूल खिले हुए हैं कृष्ण के चरणों में उपहार दे रहे हैं, अथवा उनसे रस टपक रहे हैं, मानो विरह से आतुर होकर के या देख करके आनंद के मारे वो रो रहे हैं, आनंद मारे से साक्षुक के जल पर। ये नीम का पेड़ होता है या और पेड़ होते हैं, उनसे रस टपकता है, ऐसे आम से भी आम की मंजरियों पर और पत्तों पर एकदम मधु लग जाता है, उसे लोग चाटते हैं, इसी तरह से वो कह रही है। और ये धूम मानो पुष्पित हो रहे हैं, डालियों को झुका रहे हैं, माने क्या पुलक हो रहा है, अश्रु उनके नेत्रों से चल रहे हैं, इस प्रकार से अब इनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, इनका धर्म परिवर्तन हो जा रहा है, क्यों, इसलिए कि आपका सुंदर ही इतना आकर्षक है और आपकी बेणी भी इतनी आकर्षक है, इसलिए ऐसा हो जाता है। अभी हम लोग अपने पाठ के एक कीर्तन हम लोग करें, मैं तो अभी करती थी वो रूप गोस्वामी जी का बंधु संग जैली था के मोने मुखर चाहते थी खुले गई थे तो नहीं जाएगा, ओके वृंदावन खबरदार मत जाना, वृंदावन कखनो दियो ना, से बोलो जिसे कैन जाबो ना, जाओ ना, यदि तुम्हार बंधु संगे रंग थाके, माता पिता भाई बंधु पति संगे यदि थाकवार इच्छा थाके आज सुख भोगवार थाके तारे खबरदार वृंदावन दियो, यदि वृंदावन जाना भी तो कैसी घाट पर मत जाना, कैसी घाटे जियो ना, और यदि कैसी घाटे जाओ तो सीखने से त्रिभंग ललित स्थान अधरे थे बंसी, खबरदार उनका दर्शन मत करना, नहीं तो उनका दर्शन करके कोई लौट करके फिर घर में नहीं जाता, यदि शरीर चला भी जाएगा, यदि शरीर यदि चलियो जाए तो उनका मन वहीं पर रह जाएगा, घर में जाकर के केवल शरीर प्राण रहित शरीर को ले जाकर के क्या करेगा, इसलिए नहीं जाना ही उचित है। आप लोग वृंदावन में जाकर के गोविंद जी का दर्शन मत करें,
संगे गोलीवा रंगा पोरी हाट
साथ में रहना चाहते हो तो मेरी बात को रखो, खबरदार तुम वृंदावन में मत जाओ, बूढ़ा हो जाना तब जाना, बूढ़ी हो जाना तब जाना, अभी खबरदार मत जाओ, नहीं तो अपनी स्त्री से प्रीति नहीं रहेगी, पति से प्रीति नहीं रहेगी, भाई बंधु से प्रीति नहीं रहेगी, कहीं भी प्रीति नहीं रह जाएगी, इसलिए मेरी बात रखो, मुझे इसका अनुभव है। खबरदार मथुरा के अंदर में, मथुरा मंडल के अंदर में वृंदावन है, और वृंदावन में जमुना के किनारे पास ही में केसी घाट के पास ही में गोविंद जी हैं, खबरदार वहां मत जाओ। क्यों नहीं जाओ?
गोविंद विग्रह अधूरी तथा
खबरदार
उनके मुखों में बंसी है अधरों पर, और ऐसी मधुर उसमें से स्वर निकल रहा है, यदि सुन लिया तो फिर घर लौटना मुश्किल हो जाएगा। और ये इस पर सिर पे चूड़ा है, खबरदार उसका विश्वास मत करो जिसके सिर पर चूड़ा और ऐसी सुंदर बंसी है, खबरदार उसका विश्वास मत करो। यदि एक बार उसका मुखारविंद दर्शन कर लिया, त्रिभंग ठाम ऐसे हुए हैं, कमर से टेढ़े, गर्दन से टेढ़े और पैरों पर पैर रख करके कदम्ब वृक्ष से कुछ ऐसे लगाए हुए,